ज्ञानद्विजं अस्य ज्ञानं यमुच्छाद्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महाभजन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवं हे कृष्णप्रेमी दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे दीनेश्वरी प्रणमामि हा देवि काकु वरगदगदयाक्तवाच जाचे निपत्तभूविदं भवतु भुवतर्हि पश्चाप्रसादमभूतस्य अङ्गश्यामलिमिषताभिरभितो मन्दे कृतेन्दीपरं जड्डं जागुदरोच सङ्गविदधतनपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्कामाभिरामो राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्याये भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकारूपाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय वैराग्यजुगभक्ति अपायन्माननुभे सुमन्दम् कृपाम्बुदिरिजा परदुःखदुःखे सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महीं ददाति सकलं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतते दैपायनो विरहकाकरया जुहाव न ज्ञामि तया विना इति प्रेख्याय राधे भगवता मनुष्य करता है वैकुंठ लोक में भगवान की बहुत सी मूर्तियां हैं, देखने में सब पृथक हैं किंतु कोई भी पृथक नहीं, सभी एक ही। जैसे कल बतलाया था ब्रह्मा जी का उदाहरण देकर, ब्रह्मा जी चोरी करने के लिए सखाओं को और बत्सों को गए, और जितने बछड़े और गोपाल लठिया कंबल उनका जो कुछ था वो सब कृष्ण बन गए। यहाँ तक उनकी स्वभाव बातों का जैसे बात स्वर सब कुछ वो बन गए, जैसा जैसा उनका स्वाभाविक था सब कुछ वो बन गए। बछड़े बने हैं और लठिया बने हैं, कंबल बने हैं और स्वयं कृष्ण है, किंतु कृष्ण से उनका कोई भी सब भेद नहीं, कोई भी भेद, सभी एक ही। ब्रह्मा जी ने इसको अनुभव किया। अब उसी चीज को कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अभी उदाहरण देंगे। ये दुर्विपक क्या, दुर्वीर तर्क क्या, सारी शक्ति अद्भुता परमेश्वरी, किंतु ऐश्य एकांत भक्ते सुगूढ़ किंचन न तिष्ठति। किंतु भक्त लोग उन मूर्तियों में एक साथ व्यवहार नहीं रखते, नहीं, यदि रखा तो भाव की सिद्धि नहीं, सब में बराबर ही भाव रखते हैं। भले ही वो लठिया को जैसा रखेंगे देखेंगे और कृष्ण के स्वरूप को भी वैसा ही देखेंगे। रामचंद्र जी हैं, नारायण हैं, नृसिंह हैं, वामन हैं, वही तो कृष्ण ही एक ही हैं। साधारण आदमी जो तटस्थ व्यक्ति है वो तो बराबर रखे सब, तुलसी जी का सब पत्ता बराबर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे छेद है, जैसा है कि सूखा है कि गीला है कि कच्चा है, सब तुलसी जी के जितने पत्ते हैं वो सब, जितने वैष्णव हैं भाई सभी हमारे लिए बराबर। कौन उत्तम भागवत है और कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, हमको ये देखने की जरूरत। वैष्णव हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, तिलक लगाए हैं, हरिनाम की झोली है, हमारे लिए सभी भगवान, ऐसा लोग कहते हैं। ये लोग तटस्थ हैं, भगवत भक्ति में तटस्थता ठीक नहीं है, उसमें अनन्यता होनी चाहिए। कृष्ण और राम, नृसिंह, नारायण एक होने पर भी एक इष्ट देव में ही आना पड़ेगा, तब तो भजन की सिद्धि होगी, और नहीं सब बराबर हैं और एक भी हैं, तत्व की दृष्टि से ठीक है किंतु उपासना की दृष्टि से थोड़ी सी इसमें कमी आ जाएगी, और ये यदि कमी यही गुण है वहां। जैसे कृष्ण के लिए कल बताया था, कृष्ण मुग्ध भी हैं और श्री कालज्ञ सर्वज्ञ भी हैं। कृष्ण का मुग्ध रहना, मुग्ध माने क्या है, उनको ये विचार नहीं है क्या मुझे करना है, नहीं है उनको ज्ञान नहीं है, ये मुग्धता है। या यशोदा जी के हाथों में लठिया दे करके रो देना, घर में चोरी करना, झूठ बोलना, अरे तुम के घर में चोरी करने गया, मैं कब गया, अभी तो सवेरे थे, तुमने हमको मधुबन में तो भेज दिया गैया चराने के लिए, और दिन भर गैया चराता रहे, शाम हुई तो गैयों को लेकर के आया, और तब तेरे पास में तभी से हूँ, तो मैंने चोरी कब की तू ही बतला, और इधर में चोरी कर आए। ये जो मुग्धता है भगवान के लिए ये गुण है, और भक्तों के लिए ये गुण है, निर्विशेषवादियों के लिए यही और गुण है, आर्य समाजियों के लिए ये दुर्गुण है, वो उसको नहीं समझेंगे। तो भगवान में ऐसी विचित्रता का होना ये गुण है, किंतु तटस्थ वालों नहीं समझ सकते हैं, तटस्थ वाले तटस्थ माने क्या भाई? दो लोगों में केस हो रहा है, एक साधु और एक चोर। चोर ने कहा कि भाई हमारे तरफ से गवाही दे देगा, भाई हम तो ठीक ऐसे ही। साधु ने कहा कि हमारे तरफ से दे देंगे तो क्या कहेगा, हमारे लिए भाई दोनों बराबर ही है। जैसे आजकल गवर्नमेंट के लिए अयोध्या का मंदिर तटस्थ होता है, गवर्नमेंट इसके लिए तटस्थ होता है। जो एक निष्ठ है राम में, वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत में अयोध्या, और जो साधारण तटस्थ हैं, अरे भाई इसके लिए लड़ाई करने की और मारने मरने की क्या जरूरत है, मंदिर हो और न हो तो पूजा करेंगे नहीं, तो मंदिर हो या मस्जिद हो हमसे क्या भाई, झगड़ा वगड़ा मत करो, एक तटस्थ कुछ बना दे, कोई चीज ऐसा हो जाए, कोई मैटरनिटी हाउस वहाँ हो जाए तो वो अच्छा है। बीच से ये लोग तटस्थ है, ऐसे भक्ति राज्य में तटस्थ होना सबसे खराब है, उसमें अनन्यता का गुण है, तो इसलिए कृष्ण कभी भी तटस्थ नहीं रहते, ब्रह्म स्वरूप में तटस्थ रहेंगे, निर्विकार निरंजन अनादि अशक्त, ऐसा कहीं भी अशक्त, और ब्रह्मवादियों के लिए ही ये गुण है, किंतु कृष्ण के लिए भगवत्ता के लिए यही गुण है। कौन कहता है जैसे वो तटस्थ हैं? दुर्योधन और पांडवों में युद्ध हुआ तो पांडवों का छल चतुराई कपटता करके भी पांडवों का पक्ष लिया, इसलिए भक्तों का पक्ष। कौन कहते हैं कि सूर्य तटस्थ हैं? जो सामने आते हैं उनको अपनी रोशनी देते हैं और उनके शरीर को गर्म करते हैं, जो भीतर में रहता है उसको नहीं करते, तो सूर्य तटस्थ कहाँ है, किंतु है तटस्थ। ऐसे ही भगवान, इसलिए ये कहते हैं कि ये सब होता है कैसे, भगवान में एक सब समाधान करने वाली अचिंत घटन घटन पटियसी एक शक्ति है, उसी को कभी पराशक्ति, कभी अचिंत शक्ति, कभी स्वरूप शक्ति, कभी कुछ उसको मानते हैं। ये कृष्ण तो चुपचाप रहते हैं बैठे हुए, जैसे घर का मालिक बैठा हुआ है और सबके लिए डिपार्टमेंट दे दिया है और अपना अपना काम सब लोग करो, किंतु चुपचाप बैठा हुआ, बैठा हुआ क्या है, किंतु नजर उसके सब पर है। ऐसे ही कृष्ण की सब शक्तियां चुपचाप बैठे हैं, शक्तियां सब अपने आप इस जगत में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, किंतु उनके शक्तियों के इस संचालन में कभी न गड़बड़ी हुई, न कभी होगी, न कभी है, ऐसी उनकी ये शक्ति है। जैसे कृष्ण ने चोरी की और चोरी करने की खबर यशोदा जी को मिली, यशोदा जी बिगड़ गई, क्रोधित हो गई परम ब्रह्म का और बोली जैसे अब घर में भी चोरी करता है, मटका फोड़ दिया, इसको दंड देना है, इसको कोमल अंग इसका है, मारूंगी तो नहीं किंतु बांध करके रख दू, तब ये समझ। हाथ में रस्सियां मंगा ली और कृष्ण को पकड़ करके एक हाथ से और एक हाथ से रस्सी लगाने लगे, दो अंगुल कम पड़ गए, फिर मंगाई फिर बांध, फिर दो, ऐसे करते 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 10 बज गया सवेरे से, अंधेरे से ये लगा दी, 10 बज गया वो नहीं बंधे, दो अंगुल कम पड़। उस समय में यशोदा जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई, जो उलाना देने आई थी जैसे इसको दंड देना चाहिए ये बिगड़ रहा है, वो भी ताली बजा करके हंसने लगी, अरे इसका तो बंधन ही नहीं दिखा, तू कैसे बांध देगी, सारे ब्रज की रस्सियां लगा करके इसको बांधा गया और ये बंधा नहीं, दो अंगुल कम पड़ता है। यशोदा जी को भी आज तक लंबी रस्सी होती चली गई और कमर इतनी सी ही बस 12 अंगुल की और उसी में कर्धनी लगी हुई है, सोने का कर्धनी, अब वो न तो घट रही है न बढ़ रही है, और बंध नहीं रहे, क्यों, अभी तक उनकी ऐश्वर्य अचिंत शक्ति जो थी भगवान में अव्यक्त रूप से थी, कार्य नहीं था, वो सेवा का अवसर खोजती है सब। जैसे सब समय नौकर चाकर काम नहीं करते, प्रतीक्षा करते हैं कि मालिक आदेश देगा तो मैं करूंगा। इसलिए उनकी कोटि कोटि शक्तियां उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे जैसा आदेश नहीं, भगवान कुछ मन में विचार कर और साथ ही साथ उस काम को हम करें। यहां पर कृष्ण सोचे आज मैया तो मुझे बांध देगी, किंतु गाय तो बाहर में डकर रही है हमारे दर्शन के लिए, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये दूध ही नहीं देगी। बछड़े भी डकर रहे हैं मेरे, अभी सखा लोग आएंगे, आज सखाओं के साथ में हम खेलने के लिए नहीं जा सकते, आज हमारे सखा लोग भी बड़े दुखी हो जाएंगे। ऊपर से तो हंसेंगे हमें देख करके, ये तुम्हारी मैया ने अच्छा शिक्षा तुम्हें दी, किंतु भीतर में बड़े दुखी होंगे, आज उन लोगों का खेल नहीं होगा। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह है, उनके साथ तो खेलती नहीं किंतु उनको देखने में ही आनंद आता है। वो छोटी छोटी अभी बच्चियां हैं, अभी कृष्ण भी तो छोटे हैं ना, कितने वर्ष के ये लीला हुई, साढ़े तीन वर्ष, तो साढ़े तीन वर्ष की बच्चियां या दो वर्ष की बच्चियां भी कृष्ण के साथ में कृष्ण को देख करके बड़ी आनंदित, आज भी हमारा दर्शन नहीं कर सकेंगे, मैया घर के अंदर में बांध, क्या अच्छा होता कि आज मैया मिला, किंतु ये मुग्धता से कर रहे हैं, सर्वज्ञता से नहीं। अब उनकी अघटन घटन पटियसी स्वरूप शक्ति ने देखा, जिसको कहते हैं जोग माया भी, योग माने जिनके योग से भगवान की जितनी भी लीलाएं होती, उनके जितने भी कार्य होता है, जिसके योग से उसको योग माया कहते हैं। तो ये योग माया ने देखा जब प्रभु की सेवा का अवसर उपस्थित हुआ, अब ऐसा करना है कमर भी न बढ़े, बंधे भी नहीं, और कृष्ण खेलने भी जा सके, ये कैसे होगा, बस ऐसा किया, कमर भी न बढ़े, नहीं बढ़ी, रस्सियां बढ़ती गई और दो अंगूठी के ऊपर, तीन चार पांच छ बस रोइया, ऐसा होना असंभव, किंतु ये असंभव भी जिस शक्ति के द्वारा हो गया उसी का नाम स्वरूप शक्ति है। ऐसी लीला के माध्यम से ही भगवान लीला करते हैं, योग माया समान देता। यदि किसी को दर्शन भगवान देते हैं या नहीं देते हैं, इसका कारण क्या है, योग माया, योग माया जिस पर प्रसन्न हो जाती है वो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, जो योग माया जिस पर प्रसन्न नहीं होती वो भगवान का दर्शन, उनकी समस्त लीलाओं का आधार यही योग माया। अपने संपूर्ण रूप में अंतिम बिंदु तक जहां पर उसका प्रकाश होता है, हो सकता है जितना, उस रूप में ये राधा जी स्वयं है। वे योग माया शक्ति जो है अपनी परिपूर्णतम बृहत अवस्था ये स्वयं श्रीमती राधा है, और वही बैकुंठ में द्वारका में सप्तधाम रुक्मिणी इत्यादि के रूप में, बैकुंठ में लक्ष्मी इत्यादि के रूप में, और देवलोक में जितने भगवत अवतार हैं उनकी लक्ष्मी के रूप में, और चंचला लक्ष्मी के रूप में, अचंचला लक्ष्मी के रूप में, सब में वही अपने अपने कहीं छाया रूप में कहीं प्रकाश। जगत में जो चंचला लक्ष्मी है, चंचला लक्ष्मी किसको कहते हैं, आज उनके पास में धन है कल उसके पास में धन है, ये जो है ये पतिव्रता नहीं है, ये चारों तरफ में घूमती रहती है, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ कल उसके यहाँ, ये कौन है, स्थिरा जो लक्ष्मी जी जो भू श्री और नीला जो हैं, उनकी ये छाया शक्ति, जैसे दुर्गा जी छाया शक्ति हैं, ये विंध्यवासिनी जी कंकाली और सब जो चामुंडा इत्यादि, ये जैसे इनकी छाया शक्ति है, ऐसे ही ये छाया शक्ति रावण के लंका की जो रक्षयित्री थी लंकिनी जी, वो भी इनकी छाया शक्ति। असुर लोग उस देवताओं की छाया हैं, इसलिए असुर लोग उनकी उपासना करते हैं। और वो चंचला है, जब हनुमान जी गए और एक मुष्टिकाघात किया तो वहां से भगपति चली गई। अब यह रावण का विनाश अब बहुत जल्दी होने वाला है, ये बंदर आया और मुझे मारा, व्याकुल हो गई, अब यहाँ पर नहीं रहा, बस चली। ऐसे ही ये जो छाया शक्ति है लक्ष्मी, वो भी राधा जी ही मूल है, और इस जगत में आज यहाँ कहा वहां, कभी चंचल इधर उधर, कभी एक जगह नहीं। कोई एक व्यक्ति सबसमें धनवान बना रह जाएगा, उसके पुरखे बने रहेंगे, लक्ष्मण के घर से बधी रहेगी, ये कहिया। किंतु भक्ति के रूप में जो लक्ष्मी है, जो भगवान के साथ में जो करने वाली जो भक्ति देवी हैं, ये स्थिरा हैं। भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यदि साथ दैवे न फलत दिव्य किशोर मूर्ति भक्ति मुक्तिसांजले सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतया समय। ये समय की प्रति ये भक्ति जहाँ जाएंगे ना वहाँ स्थिर हो जाएंगे। कल एक ही स्थिति में वो जाएंगी, यदि किसी ने अपराध किया तब तो उस व्यक्ति के पास नहीं, अन्यथा स्थिर होकर के वह। किंतु ये भक्ति आती नहीं जल्दी से, बड़ा मुश्किल है उनका, ये भी इसमें सब दिखलाए। तो कहते हैं दुर्वितर्क, ऐसी ये भगवान की पराशक्ति है, तर्क के द्वारा उनको समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सेवामय भावना से वो कहीं आ सकती हैं। यदि हमारे अंदर में एक निष्ठ एक स्वरूप के प्रति भावना, तब तो आ जाएगी। और जिसमें एक स्वरूप में जिसकी अनन्य निष्ठा नहीं है, वो नहीं है। आप चाहेंगे राम और सीता का भी भजन करें, राधा और कृष्ण का भी भजन करें, कृष्ण और रुक्मिणी का भी भजन करें, कृष्ण और चंद्रावली का भी भजन करें, सबका तत्व की दृष्टि से तो ठीक है, हो सकता है कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाएगी, हो जाएगी, किंतु निष्ठा नहीं रहने से उसमें कोई भी रस आनंद नहीं रहेगा। इसलिए हनुमान जी तुलसीदास जी ने भी दिखलाया, धनुष बाण ले लिए, हमारा मस्तक न
होगा,
ये अनन्यता खराब नहीं है, ये ठीक है। जतिन प्रभु एक ही दुर्वितर्क शाही शक्ति अद्भुत परमेश्वर, ये परमेश्वर की जो अचिंत शक्ति है दुर्वितर्क है, किंतु तर्क से अति सहज रूप में अपना दर्शन और अपना प्रभाव सब प्रदर्शन कर सकते। कब? यदि अनन्य भजन की भावना सहज रूप में, ये गोपियों का भाव ये तो बहुत ऊपर, अरागानुगा भक्ति बहुत कठिन है, सुदुर्लभ भाव आना भी सुदुर्लभ, किंतु बहुत सहज भी। जो चीज जगत में सबसे गंदा है कभी कभी वो सबसे सर्वोत्तम भी हो जाता है, यदि भगवत संबंधी हो जाए तो। विक्रीडितम ब्रजवधु भी इदं च विष्णु सद्धान्वितो
ईस्मिया अथवर्ण जी
अथा है वर्णयेद ज भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं प्रतरोगमाशु
अपहिक्त चिरेण धीर।
बहुत सुंदर व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपनी टीका में। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले मैं अपराध अनर्थ सब छोड़ करके खूब शुद्ध होकर के भगवान का भजन, ये कभी हो नहीं सकता, एब्सर्ड। कभी नहीं ऐसा हो सकता। जो पहले मन को शुद्ध कर लें, एकाग्र कर लें और एकदम निर्मल हृदय बना लें और तब फिर भगवान का भजन करेंगे, तब फिर भक्ति होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मन को एकाग्र करने में ही आपको कोटि कोटि जन्म लग सकता है। कभी एकाग्र होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र और वृंदावन वाले अवहरी इत्यादि सब ऋषियों को देखा जाता है, यहाँ तक कि नारद जी को भी देखा जाता है, चंचल हो गए। तो इसलिए मन को एकाग्र तो कोटि कोटि जन्म में नहीं कर सकते, तो कोटि कोटि जन्म बैठे रहिए, नदी का पानी सूख जाएगा तब फिर हम इसको पार करेंगे। जो जिस अवस्था में जैसे भी है, डकैत है, चोर है, बदमाश है, दुराचारी है, पवित्र है, जो जैसा है, उसी स्थिति से ही भगवान का भजन आरंभ कर दे, नाम करना आरंभ कर दे भगवान का भजन, और बाकी भक्ति अपने आप से। इसलिए कहते हैं विक्रीडितम ब्रजवधु भी इदं च विष्णु सत्यामितो सुनिए वर्णयेत अथ वर्णयेत जह भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश। कहते हैं जिस इस जगत में कोई एक एक व्यक्ति पुरुष, उसकी शादी है एक जगह, किसी स्त्री से लड़की से प्रेम करता है, ये इससे बढ़ करके और दुराचार कुछ नहीं हो सकता। किंतु यही भाव यदि भगवान पर लग जाए तो ये दुराचार नहीं हुआ। क्यों? भगवान कहीं दूसरे के पति नहीं है, वो तो प्रत्येक जीव के हैं पति, इसलिए उनके संबंध में ये नहीं होगा। इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति ऐसा भाव, ये जगत में भक्ति के या पर जगत में जो भक्ति के दृष्टांत हैं उन सब में सर्वोत्तम भाव है। भले ही लोग यहाँ तक कि जो परीक्षित सुन रहे हैं कहते अरे ये जार बुद्धि रखने वाली और कृष्ण में भगवान की बुद्धि नहीं रखने वाली, दूसरे का प्रियतम या पति समझ करके भी चोरी छिपे मुझसे प्रेम करती हैं और इतनी बड़ी भारी बन गई संसार में, सबका आदर्श बन गई, उद्धव नारद सनत कुमार जैसे लोगों के भी परम आराध्या बन गई और वो लोग उनके चरणों की का ध्यान भी है पहन गई, इतनी बड़ी महान। तो जो लोग ऐसे गोपियों का विक्रीडितम ब्रज वधु भी कृष्ण ग्वाल बाल बन गए और उनके साथ में क्रीड़ा कर, उसको यदि कोई श्रद्धा पूर्वक सुने, अनुसुणियात माने गुरु करके शुद्ध और तत्पश्चात जो शरण करता है, शुद्ध गुरु आदर्श रसी भागवत तत्पत्ति और अनुसुणियात और उसका फिर निरंतर श्रवण करता है और उसमें अनन्य भाव हो जाता है, न अन्य भाव अनन्य, अब वही हमारे सर्वस्व हैं, इस भावना से उसको जुड़ता है और बड़ा उसमें उसको आनंद मिलता है। इसको यदि कोई अनुसुणियात अथ वर्णय अनुवर्णय अनु उसमें भी आ जाएगा विशेषण है, दोनों आ जाएगा, दोनों अनुवर्णय और उसका वो अनुगत्य में वर्णन करता है, जैसे उसके गुरु जी ने, जैसे व्यास जी ने जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी को श्रवण कराया ठीक उसी रूप उन्होंने परीक्षित सभा में उनको वर्णन किया, और जैसे व्यास सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया सुत गोस्वामी ने ऋषियों की सभा में ठीक वैसे ही वर्णन किया। यदि ऐसा यदि कोई वर्णन करे और सुने श्रद्धा पूर्वक तो क्या होगा?
भक्ति परांग भगवती
परांग माने कृष्णा, कृष्ण रूपी परांग, कृष्ण जो पर हैं माने सबसे श्रेष्ठ तत्व हैं, उनमें भक्ति लाभ करके उनमें भक्ति होगी पहले ने? और भक्ति जितने परिमाण में होती जाएगी प्रतिलब्ध कामम हृदय रोगम उसके हृदय में प्रतिलब्ध कामम
गोपियों का जो काम है प्रेम है उसको वो लाभ करेगा, और लाभ करने से क्या होगा,
हृदय रोग मासू
परिणति,
उसका हृदय का जो रोग है
क्या रोग है,
क्या रोग,
सबसे मनुष्य के लिए स्त्री पुरुष के लिए काम है अंधा बना देता है, पशु पक्षियों को भी अंधा बना देता है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या।
हिटलर विश्व का विजय किया किंतु मृत्यु का कारण एक लड़की बन गई।
महाभारत का युद्ध केवल एक द्रौपदी के लिए ही होता,
लंका में लाखों करोड़ों लोग युद्ध और सब लोग वंश के साथ में ध्वंस में, किसके लिए,
सीता जी के लिए,
एक सीता जी के लिए, खरगोशों से लेकर के सब।
और इस काम ये इतना व्यापक है, इस काम में किसी चीज की भी भोग की लालसा का होना, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं दूध पीऊंगा, मैं कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कोई भी कामना अन्य अभिलाष हो, ये सब की कामना, ये जितने प्रकार की नीचे से ऊपर तक कामनाएं हैं, प्रतिलभ्य कामम, प्रतिलभ्य, वो जो काम है भगवान के प्रति गोपियों का, जो जो सुन रहा है उसके हृदय में अपने आप आ जाएंगे, और आकर के क्या होगा, ये जो संसारिक जो कामना हृदय रोग है जिसके वजह से जन्म जन्मांतर में हम बंधन में पड़े रहते हैं और पड़े रहेंगे, उसको क्या करती है वो आकर के, वो कामना, वो प्रेम आकर के इसको अच्छी रही ना, बहुत जल्दी,
बहुत जल्दी से शीघ्र, जो कोटि कोटि साधनों के द्वारा सहज रूप में नहीं होगा उसको ये आकर के एक बुरी चीज भगवान के प्रति लगाया, और वो आज एकदम पवित्र बन करके आज हमारे इतने पवित्र की जो है उसको ध्वंस कर दे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती छात्र, तुम अपने दुर्गुणों को हटाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, अपने हृदय रोग को दूर करने के लिए चेष्टा मत कर, कोटि कोटि जन्म में ये नहीं होगा, एक बात कर, इनकी चिंता ही मत करो ये है कि नहीं है, बस भगवान की भक्ति श्रवण के संस्मरण में रहो, और जितनी प्रकार की कथाओं को सुनने का है उनमें कृष्ण की जो रासलीला गोपियों के साथ में जो क्रियाएं हैं कृष्ण, ये सर्वोत्तम। यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर दिया है कि नहीं है, फुर्सत नहीं है चिंतन करने का, और दिन रात वही कथा का चिंतन करके उसी में लग गया, रम गया, तो अब पाप कौन करेगा, तो लग गया उधर में, इसलिए प्रतिलब्ध काम हृदय रोग मासु अपचिन्य अचिरेण धीरा, जो धीर है कौन, जिसकी बुद्धि
धीर हो गई है,
धीर है, धीर किसकी होगी, ददामि बुद्धि योगम संगेन मामुपयंतिते, माने जिनको भगवान ने वो बुद्धि दी है, कौन सी बुद्धि दी है, भगवान देने वाले हैं ना, अनुग्रह करके वो बड़ी करुणामय है। अभी किसी जगह हम लोग देख रहे थे शायद राग वर्त, वो कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, प्रभु आप बड़े दयालु, आपने कहा है कि ददामि बुद्धि योग, तो हमको तो वही बुद्धि योग दीजिए, कौन सी बुद्धि योग चाहता है, जो अर्जुन को मैंने दिया था वही बुद्धि योग ना, हमको वो दीजिए, वो अर्जुन के लिए रख, या वैसे लोग जो चाहते हैं हमारे लिए, तो ऐसी बुद्धि योग कि आप स्वयं ब्रह्म होकर के भी अपने को भूल जाते हैं, जिनके साथ में क्रीड़ा करने में, जिनकी सेवाओं को प्राप्त करके अपने को भूल जाते हैं, और उस समय में उनके सेवक बन जाते हैं, इनके उन गोपियों के सेवक बन जाते हैं, और रम जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, और उन्हीं सब कुछ भूल जाते हैं, मैं वैसे ही बुद्धि चाहता हूँ, ये आप भी जैसे उन लोगों के लिए सर्वथा भूल जाते हैं, उनकी सेवा में मस्त हो जाते हैं, और एक साधारण व्यक्ति जैसे नरलीना अनुरूप आप सब कुछ करने के लिए बात करते हैं, बस आप कृपा करके वही बुद्धि योग हमारे अंदर में प्रेरित कीजिए, जिससे मैं वैसे धीर बन जाऊं। धीर धीर का तात्पर्य दिए ऐसी धीर हमारी हो जाए आपके द्वारा, जो कि मैं आपको उसी रूप में आपको मैं पाऊं, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना। अब इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भाई साधन ऐसा करो। मैं चोर, हे प्रभु मैं बड़ा चोर हूँ, डकैत हूँ, बदमाश हूँ, ये सब समय मत करो। तुम भगवान की लीलाओं में इतने रम जाओ, मैं अधिकारी ही हूँ, अधिकारी नहीं हूँ, ये तटस्थ व्यक्ति विचार करता है। जिसको रसगुल्ले का लोभ हो गया, भाई कैश पैसा तो है नहीं पॉकेट में, ये चोरी से मिले, सीना चोरी से मिले, जैसे लेना है वैसे, तो भक्ति का लोभ भी ऐसा जिसको हो जाता है, तो भगवान कृपा करके उसको बुद्धि के लिए देते हैं। यही बुद्धि योग को योग माया कहते हैं। आप पद लीजिए, ये बुद्धि योग, बुद्धि कौन है, इसी के लिए यहाँ कह रहे हैं दुर्विता भगवान की ये जो योग माया शक्ति ऐसी अभी तर्क है। भाई उनको हो गया, हमको भी जरूर हो जाएगा, या उसको क्यों हो गया, बिल्लो मंगल को क्यों हो, इतना बदमाश व्यभिचारी, उसको क्यों हो गया, हमारा तो चित्त निर्मल है, हमने कभी जीवन में चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोली, तो हमको क्यों नहीं भक्ति हो जाएगी, ये क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, दुर्विता। उसी योग माया के शक्ति से ही प्रभु का इतना प्रकार का रूप है, किसी रूप में कैसा भाव, किसी रूप में कैसा भाव, जब वही भगवान नर और नारायण के रूप में आते हैं, ब्रह्मचर्य के रूप में, उस समय में एकदम ध्यानस्थ रहते हैं, उनका एक भाव, राम के रूप में एक भाव, और रूप में एक भाव, ये सब कैसा होता है, वही योग माया के प्रभाव से पारमेश्वरी, परमेश्वर से पारमेश्वरी। किंतु अस्य एकांत भक्तेषु गूढ़ किंचिन न तिष्ठति, किंतु तथापि उनकी कृपा से एकांत भक्त बन इस दुर्वितर्क योग माया को वो अच्छी तरह से समझ जाता है, भक्त और कोई नहीं समझ सकता। वो जो पहले वर्णन किया था इसलिए फिर ये बतला रहे हैं, भाई भक्ति में कोई एक उपाख्यान है, कोई श्लोक है, तो उसके भीतर रहस्य में जाने की चेष्टा करते, कौन लीला किस लिए हुई है, यदि थोड़ा सा भी कोई किसी के हृदय में वो भावना आ जाए तो वो गदगद हो जाता है, इसी किस को कहते हैं इसको। और जब तक नहीं, लाख बार श्रीमद् भागवत पढ़ जाइए लीला, कुछ होगा जरूर, किंतु वो लाभ नहीं होगा जो कि किसी भक्त से सुन करके उसके भीतर में प्रवेश करने की लालसा है। ये नारद जी उसे बतला रहे हैं, जैसे इन चीजों को समझ लेगा तो गोलोक में जाने के लिए, गोकुल में जाकर के ये कुछ कर सकता है, अन्यथा साधारण रूप में ये रहता है। जैसे सनत सनंदन सनत कुमार गए, वहां पर कुछ दर्शन किया, पत्नी सहस्त्री जुगपत प्रणीता द्रव्यम सभुंते भगवान तदैक पश्यन्तिता नत्र तथा प्रतिबिंब मादौ ममा दत्त तदेव मे अस्ति। नारद जी कह रहे हैं कि एक बार मैं द्वारका गया, प्रभु की बड़ी विचित्र लीला देखी, वहां पर जितनी रानियां हैं, पटरानियां रुक्मिणी इत्यादि सहस्त्र पत्नियों ने रसोई बनाई बड़ी विचित्र विचित्र।
आज सभी लोग मिल करके देखे ये कौन कितना स्वादिष्ट और कितना सुंदर और कितने प्रकार का भोग कृष्ण को लगा खिलाती है अपने, और सबने कृष्ण को अपने अपने घरों में, ये भी देखते हैं कि हमारे घर में आते हैं ना उनके घर में जाते हैं, अपने अपने घर में, और कृष्ण को निमंत्रण दे दिया, कृष्ण राज सभा से निकले। आज नारद जी भी थे, जिस समय में वो घर से निकले उन्हीं का ये कार्य था, उन्होंने कहा कि आज यदि कृष्ण को कोई भोग लगा करके खिलाएगा अपने अपने घर में, वो अखंड सौभाग्यवती होगी, इसलिए उनके कहने से आज, और वो राजसभा में जा रहे हैं सुधर्मा सभा से। नारद जी भी आज देख रहे हैं कि भाई किसके घर में ये जाते हैं, निकले, निकल करके ही जितनी रानियां उतने कृष्ण हो करके प्रत्येक के घर में, नारद जी ने भी उतना ही रूप बनाया और उनके साथ में पीछे पीछे वो भी हो, जहां जहां कृष्ण, ऐसे भक्तों में भी है, भक्तों को मत पंथ समझना, एक ही राधा जी, जब कृष्ण नारायण बनते हैं तो राधा जी क्या करती हैं, यदि वो बामन बन गए तो
बामन मिल के लक्ष्मी,
महाप्रभु जी जहाँ आ गए तो क्या बने,
विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया बनते हैं।
इस तरह से जहां जहां उनकी लीला होगी, शंकर जी यदि सदाशिव है ना, वो यदि शंकर का रूप धारण तो वो क्या करेंगे, अपने अंश और कला से। तो ऐसे ही भक्त लोग भी जो लीला रसिक हैं, कोई कोई एक लीला में ही आबद्ध रहते हैं और कोई कोई सभी लीलाओं में भी जा सकते हैं, उतना स्वरूप बना करके उनकी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, एक लीला से उनका आस्वादन पूरा नहीं। नारद जी वैसे कौन रस के हैं भाई, ये बतलाना में बड़ा भारी कठिन है, बड़ा कठिन। वो इधर नारायण के पास में है, राम के पास में भी आ जाते हैं उसी रूप में, राम के नारायण नारद जी अलग हैं, कृष्ण के पास में जो नारद आते हैं वो अलग हैं, अलग मैंने अलग तत्वतः अलग नहीं है, भावनाएं उनकी अलग अलग हो जाती है और वो स्थायी भाव है, वो जो अलग अलग है ना उनके उनके, जैसे कि वृंदावन का कृष्ण जो है, वृंदावन प्रत्यजवाद एकम न गच्छ, वो भक्त भी ऐसा ही होगा, गोपियां कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ेंगी, जाएंगी दूसरे सखा लोग भी ऐसे। तो ये ब्रज में जब आते हैं तो मधुमंगल बन जाते हैं, और गोवर्धन के किनारे नाथकुंड पर तपस्या आराधना करते हैं, किस लिए हैं, उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो उन्होंने के अब की बार प्रभु हम सखा का भी देख लिया, वात्सल्य भी हमने देख लिया, दास्य का हम देख ही लिया है, और प्रभु यही बाकी है, इन्हीं हम देखें। तो अभी हुआ कि नहीं, अभी तो हमको तो पता नहीं है किस रूप में है, हो सकता है कभी आ भी जाए, आ गए हम, क्योंकि हम लोगों के गुरु वर्ग हैं ना, यदि नहीं आ सकते ऐसा कहेंगे, किसी किसी ने ऐसा कहा भी है, जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म कई रालक्षितों ने सहसा पुरुष कह दिया है, राधा सुधा नदी में बहुत जगह ऐसा आया है, ये शंकर को भी नारद जी को भी किसी को ये कहा तो दिया है, किंतु फिर भी ये रसिक तो कह रहे हैं नारद जी के उस्ताने से उन लोगों ने निमंत्रण किया, और ये भी कृष्ण जैसे होकर के निकले और वो भी ऐसे उनके पीछे पीछे गए, जितनी रानियों ने भोग लगाया सबके पास में जाकर उसी रूप में जिनका जैसा भाव ठीक उसी भाव से उन्होंने आस्वादन किया। एक समय में ही, कोई कोई कहते हैं कि एक ही कृष्ण त्वरित गति से, नारद जी ऐसा नहीं कर सके, और एक त्वरित गति से कब, पहले उनके यहाँ एक, उनके यहाँ सभी लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास भी सबसे पहले है, त्वरित गति से एक मिनट के लाखों में भाग में पहुंच और सबके यहाँ जाकर सब काम यह है। किंतु ऐसा होगा माधुर्य लीला में, ऐश्वर्य लीला में प्रकट कर लेंगे रूप। इसलिए ब्रज में ऐसा नहीं करते, ब्रज में वैसा करते हैं जो एक ही
पता लगा होता
है। और यहाँ पर नारद जी को जब ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं तो कोई उनको आश्चर्य नहीं होता। उनको आश्चर्य कब होता है, जब एक ही रूप से जब भी करते हैं माधुर्य रूप में, एक ही कृष्ण कैसे सब गोपियों के बीच में लाखों लाखों गोपियों के बीच में लाखों लाखों रूप में प्रकट हो रहे हैं। एक ही कृष्ण चित्तता से लगावता से सभी लोग ऐसी समझ रही हैं, ओहो प्रभु बड़े हमारे प्रति बड़े आकर्षक, हमारे प्रति बहुत सबसे अधिक हमारे ही प्रति प्रेम। कौन सोच रहा है, सत्यभामा जी सोच रही हैं ऐसे, रुक्मिणी जी, कालिंदी भी ऐसे सोच रहे हैं, जामवंती भी ऐसे, मिंद्र मिला भी सबसे अच्छा, और 16,000 वो जो कि नरकासुर के यहाँ से आई थी वो भी ऐसे, कोई भी ऐसा नहीं है। यही तो महत्ता है, एक गुरु में भी ऐसा देखा जाता है। जितने भी शिष्य